एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के सोचने के तरीके को बदला है, कह सकते हैं।
नमस्कार।
और आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट सी एल्डनी की बहुत ही मशहूर किताब इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन। हिंदी में कहें तो प्रभाव का मनोविज्ञान, सहमति के सिद्धांत।
जी।
ये किताब ही समझाती है कि हम क्यों और कैसे दूसरों की बातों पर हाँ कह देते हैं,
कई बार तो मतलब बिना ठीक से सोचे समझे।
बिल्कुल। और ये समझना शायद आज के जमाने में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।
हाँ, क्योंकि हम चारों तरफ से जानकारी और अनुरोधों से घिरे हैं। विज्ञापन है, सोशल मीडिया, सेल्स वाले, राजनीतिक बातें, हर कोई हमारी हाँ चाहता है।
सही बात है।
तो ये जानना कि कौन से वो मनोवैज्ञानिक ट्रिगर है जो हमें हाँ कहने पर मजबूर करते हैं, ये हमें फालतू के दबाव से बचाता है और अपने फैसलों पर थोड़ा ज्यादा कंट्रोल देता है ना।
बिल्कुल। ये कोई चालाक बनने की गाइड नहीं है, बल्कि दूसरों की चालाकियों को समझने की, उनसे बचने की गाइड है एक तरह से। दिमागी सेल्फ डिफेंस।
अच्छा,
तो इस कमाल की किताब के पीछे कौन है? डॉक्टर रॉबर्ट सियाल्दिनी, इनके बारे में कुछ बताइए ना।
हाँ, डॉक्टर सियाल्दिनी ये एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी और मार्केटिंग के प्रोफेसर एमेरिटस हैं और इनको मतलब दुनिया मानती है इस फील्ड में। प्रभाव और सहमति का विज्ञान जिसे कहते हैं, काफी लंबा वक्त इन्होंने रिसर्च में लगाया है।
लेकिन सिर्फ प्रोफेसर नहीं है ये, इनकी एक खास बात है जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। इन्होंने करीब 3 साल तक एक तरह से अंडरकवर काम किया।
हाँ, ये बहुत अनोखा है। सेल्समैन बनकर, फंडरेजर बनकर, विज्ञापन एजेंसी में, उन जगहों पर जहाँ लोगों को हाँ करवाना ही मतलब काम है, अंदर से देखा है इन्होंने।
सही कहा। और इसी वजह से ना इनकी बातें सिर्फ किताबी नहीं लगती, उनमें वो वैज्ञानिक रिसर्च की गहराई तो है ही।
हाँ।
साथ में जमीनी हकीकत की समझ भी है। वो जानते हैं कि कौन सी तरकीबें वाकई काम करती हैं और कभी कभी खतरनाक तरीके से काम करती हैं। ये जो डबल पर्सपेक्टिव है ना, यही इनकी बातों को बहुत पावरफुल बनाता है।
अच्छा, तो फिर ये किताब आखिर करती क्या है, इसका मतलब मेन आइडिया क्या है?
देखिये, ये किताब उन 6 कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक हथियारों का पर्दाफाश करती है,
या सिद्धांतों का,
जिनका इस्तेमाल करके लोग दूसरों से हाँ कहलवा लेते हैं।
हथियार सुनने में थोड़ा डरावना लगता है।
हाँ, वो शब्द जानबूझकर इस्तेमाल किया है शायद। सियाल्डिनी का तर्क ये है कि हमारी जिंदगी इतनी तेज है कि फैसले लेने के लिए हमारा दिमाग कुछ शॉर्टकट अपना लेता है, मेंटल शॉर्टकट्स या अंगूठा नियम कह लीजिए।
अच्छा, मतलब दिमाग टाइम बचाने के लिए कुछ आसान रास्ते ढूंढता है।
बिल्कुल। और ये अक्सर मददगार भी होते हैं, लेकिन
यहाँ एक लेकिन तो होना ही था।
हाँ, लेकिन है। जो लोग सहमति हासिल करने में माहिर हैं, सियाल्डिनी उन्हें कंप्लायंस प्रोफेशनल्स कहते हैं, वो इन शॉर्टकट्स को पहचानते हैं। वो जानते हैं कि कौन सा बटन दबाना है जिससे हमारे दिमाग में वो हा वाली रिएक्शन, वो क्लिक विर रिस्पॉन्स शुरू हो जाए, भले ही वो हमारे लिए सही ना हो।
अच्छा, जैसे टेप रिकॉर्डर का बटन दबाया और गाना बजने लगा।
एग्जैक्टली।
वैसे ही ये ट्रिगर हमारे व्यवहार को चालू कर देते हैं।
एग्जैक्टली।
तो ये किताब हमें उन बटनों के बारे में बताती है, उनके पीछे के साइंस के बारे में। इसके 2 मकसद लगते हैं मुझे। पहला तो जाहिर है, उन 6 सिद्धांतों को समझाना, पारस्परिकता, प्रतिबद्धता और निरंतरता,
सामाजिक प्रमाण, पसंद, अधिकार और कमी।
हाँ, और दूसरा मकसद क्या है?
दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी, हमें इन सिद्धांतों के गलत इस्तेमाल से, अनैतिक इस्तेमाल से खुद को बचाना सिखाना।
अच्छा।
ये समझना कि कब कोई हमें सच में प्रभावित कर रहा है भलाई के लिए और कब कोई सिर्फ अपना फायदा देख रहा है हमारे दिमाग के शॉर्टकट का गलत इस्तेमाल करके। ये जानना, ये अवेयरनेस ही पहला कदम है बचाव का।
ठीक है, तो अब उन 6 हथियारों पर आते हैं एक एक करके। ये जानना तो बहुत जरूरी है। पहला कौन सा है?
पहला है पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी। ये शायद सबसे बेसिक इंसानी नियमों में से एक है। अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम पर एक एहसान सा हो जाता है, हम उसे चुकाने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। लेन देन का नियम है ये समाज का।
हाँ, ये तो है।
और मजे की बात यह है कि ये तब भी काम करता है जब हमें वो चीज, वो गिफ्ट चाहिए भी ना हो या देने वाला हमें पसंद ना भी हो।
हाँ, वो एयरपोर्ट वाला उदाहरण याद है, हरे कृष्ण वाले जो मुफ्त फूल देते थे।
बिल्कुल।
और फिर चंदा मांगते थे लोग, वो अनचाहा फूल लेकर भी कुछ देने को मजबूर हो जाते थे, एहसान का बोझ। आजकल भी दुकानों में फ्री सैंपल मिलते हैं, वो भी यही है ना?
हाँ, छोटा सा स्वाद चखा और कई बार हम पूरा पैकेट ले आते हैं।
सही,
इसी सिद्धांत का एक और चालाक इस्तेमाल है,
रिजेक्शन देन रिट्रीट तकनीक।
वो क्या है?
मतलब पहले आपसे एक बहुत बड़ी मांग की जाती है, इतनी बड़ी कि आप मनाई करेंगे।
अच्छा।
जब आप मना करते हैं तो वो थोड़ा पीछे हटते हैं और फिर एक छोटी असली मांग रखते हैं। अब आपको लगता है कि अरे इसने मेरे लिए रियायत की, तो आप भी बदले में एहसान चुकाने के लिए वो छोटी मांग मान लेते हैं, जबकि वो छोटी मांग ही उनका असली मकसद थी शुरू से।
अरे वाह, ये तो बहुत सोचा समझा खेल है।
अच्छा, अब दूसरा सिद्धांत, प्रतिबद्धता और निरंतरता, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। इसका क्या मतलब है?
इसका सीधा सा मतलब है कि एक बार जब हम कोई स्टैंड ले लेते हैं, कोई राय बना लेते हैं या कोई कदम उठा लेते हैं, खासकर सबके सामने, तो हम उसी पर टिके रहना चाहते हैं। हम अपने कामों और बातों में विरोधाभास नहीं चाहते, कंसिस्टेंट दिखना चाहते हैं, खुद को भी और दूसरों को भी।
हाँ, मतलब अपनी बात पर कायम रहना। पर इसका फायदा कैसे उठाया जाता है?
एक बहुत फेमस तकनीक है, फुट इन द डोर, मतलब दरवाजे में पैर अड़ाना। पहले आपसे एक छोटी सी हाँ ली जाती है, बहुत छोटी,
जैसे
किसी पिटिशन पर साइन करवाना। फिर कुछ दिन बाद उसी मुद्दे पर आपसे कोई बड़ी मदद मांगी जाती है, जैसे चंदा देना या वॉलंटियर करना। अब क्योंकि आप पहले ही छोटा सा हाँ कह चुके हैं,
हाँ,
तो अब आप अपनी उस पहली वाली बात पर कायम रहने के लिए बड़ी वाली मांग मानने की संभावना ज्यादा रखते हैं। वो छोटी हाँ बड़ी हाँ का रास्ता खोल देती है।
ओ, सियाल्डिनी ने वो कोरियाई युद्ध के अमरीकी कैदियों का उदाहरण भी दिया था शायद।
हाँ बिल्कुल, कैसे चीनी अफसरों ने उनसे पहले बहुत छोटे छोटे, मतलब लगभग बिना नुकसान वाले, सरकार विरोधी बयान लिखवाए, और धीरे धीरे इन छोटी छोटी सहमतियों से उन कैदियों की अपनी नजर में खुद की इमेज बदलने लगी, और वो फिर बड़ी बातें भी मानने लगे। ऐसा लगता है कि जो कमिटमेंट पब्लिक हो या लिखा हुआ हो, वो ज्यादा असरदार होता है।
निश्चित रूप से, जब हम कुछ लिखते हैं या सबके सामने कहते हैं, तो उस पर टिके रहने का दबाव और बढ़ जाता है। ये हमारी सेल्फ इमेज से जुड़ा है। ये थोड़ा डरावना भी है कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत इतने बड़े बदलाव ला सकती है। खैर, तीसरा सिद्धांत, सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ, ये क्या है?
ये सिद्धांत कहता है कि जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करना सही है, जब हम अनिश्चित होते हैं, तो हम दूसरों को देखते हैं।
अच्छा।
हम सोचते हैं बाकी सब क्या कर रहे हैं। अगर बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं तो हम मान लेते हैं कि वही सही होगा, खासकर तब जब वो लोग हमें अपने जैसे लगें। आम भाषा में भेड़ चाल कह सकते हैं इसे।
इसका एक हल्का उदाहरण है वो टीवी शो में नकली हंसी का इस्तेमाल, कैंड लाफ्टर।
हाँ बिल्कुल, रिसर्च दिखाती है कि उसे सुनकर हम वाकई चुटकुलों पर ज्यादा हंसते हैं, भले ही हमें पता हो कि वो हंसी नकली है।
कमाल है,
क्योंकि दूसरों की हंसी हमें सिग्नल देती है कि यहाँ हंसना है।
और इसका एक ज्यादा सीरियस पहलू भी है शायद, वो बाईस्टैंडर इफेक्ट।
हाँ, दर्शक प्रभाव। किटी जेनोवीज वाला केस याद है? न्यूयॉर्क में एक महिला पर हमला हुआ, कई लोगों ने देखा या सुना, पर कोई मदद को आगे नहीं आया।
हाँ, बहुत भयानक था वो।
सियाल्डिनी कहते हैं कि ये लोगों की बेरुखी नहीं थी, ये सामाजिक प्रमाण का नतीजा था। हर कोई दूसरे को देख रहा था कि वो क्या कर रहा है। जब किसी ने कुछ नहीं किया तो सबने मान लिया कि शायद मामला गंभीर नहीं है या कोई और मदद कर देगा। अनिश्चितता में हम एक्शन नहीं लेते।
ये तो बहुत जरूरी बात है, मतलब अगर कभी मदद की जरूरत पड़े तो भीड़ में चिल्लाने के बजाय किसी एक इंसान को सीधे बोलना चाहिए, जैसे आप नीली शर्ट वाले, प्लीज मदद कीजिए।
बिल्कुल सही, ताकि जिम्मेदारी क्लियर हो जाए। अच्छा, अब चौथा सिद्धांत, जो शायद सबसे आसान लगता है, पसंद, लाइकिंग। हम उन लोगों की बात ज्यादा आसानी से मान लेते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं।
ये तो स्वाभाविक है, इसमें क्या खास बात है?
खास ये है कि पसंद पैदा करने के कई तरीके हैं जिनका चालाकी से इस्तेमाल हो सकता है।
अच्छा।
जैसे एक तो शारीरिक आकर्षण, हम खूबसूरत लोगों को अनजाने में ही ज्यादा काबिल, ज्यादा ईमानदार मान लेते हैं, इसे हेलो इफेक्ट कहते हैं। दूसरा, समानता, हमें वो लोग पसंद आते हैं जो हमारी तरह हैं, हमारी तरह दिखते हैं, सोचते हैं, या जिनका बैकग्राउंड एक जैसा है। सेल्स वाले अक्सर कॉमन इंटरेस्ट ढूंढते हैं ना ग्राहकों में।
हाँ हाँ।
तीसरा, तारीफ, सच्ची हो या झूठी, तारीफ अच्छी लगती है और तारीफ करने वाला भी अच्छा लगने लगता है। चौथा, जान पहचान और संपर्क, जिनसे हम ज्यादा मिलते हैं वो हमें ज्यादा पसंद आने लगते हैं। और पांचवा, सहयोग, जब हम मिलकर किसी एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं तो आपस में पसंद बढ़ती है।
वो टपरवेयर पार्टी वाला उदाहरण याद आ गया।
हाँ, बेहतरीन उदाहरण है वो।
पार्टी आपकी दोस्त होस्ट करती है, पसंद, वहाँ खेल होते हैं, इनाम मिलते हैं, पारस्परिकता। फिर जब दूसरे दोस्त खरीदना शुरू करते हैं, सामाजिक प्रमाण, तो आप पर भी दबाव बनता है। सारे सिद्धांत एक साथ काम कर रहे हैं।
बिल्कुल, ये अक्सर मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे को मजबूत करते हैं। अच्छा, अब पांचवां अधिकार, अथॉरिटी। हम बचपन से सीखते हैं बड़ों की अथॉरिटी फिगर्स की बात मानना, माता पिता, टीचर, डॉक्टर। समाज चलाने के लिए ये जरूरी भी है।
हाँ, लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम असली अधिकार के बजाय सिर्फ उसके सिंबल, उसके प्रतीकों से प्रभावित हो जाते हैं।
सही पकड़ा। टाइटल, डॉक्टर, प्रोफेसर, कपड़े, वर्दी, महंगा सूट या फिर महंगी चीजें, बड़ी गाड़ी, ये सब अधिकार के प्रतीक हैं। इन्हें देखकर हम मान लेते हैं कि सामने वाला एक्सपर्ट है, उसकी बात माननी चाहिए, भले ही उसका उस विषय से कोई लेना देना ना हो।
इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण वो मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट है ना।
हाँ, स्टैनली मिलग्राम का प्रयोग, जहां आम लोगों ने सिर्फ इसलिए अनजान लोगों को बिजली के खतरनाक झटके दिए जो नकली थे, क्योंकि सफेद लैब कोट पहने एक साइंटिस्ट ने उन्हें ऐसा करने को कहा था।
ये दिखाता है कि अधिकार का दबाव कितना ज्यादा हो सकता है, हमारी अपनी नैतिकता पर भी भारी पड़ सकता है।
बिल्कुल, ये प्रयोग सच में आंखें खोल देता है। और अब आते हैं छठे और आखिरी सिद्धांत पर, कमी, स्कैर्सिटी। जब कोई चीज कम होती है या कम समय के लिए मिलती है तो वो हमें ज्यादा कीमती, ज्यादा आकर्षक लगने लगती है। हाँ, लिमिटेड टाइम ऑफर, सिर्फ दो पीस बचे हैं, सेल आज खत्म, ये सब सुनते हैं हम रोज।
इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है?
दो मुख्य कारण लगते हैं। पहला, हम सोचते हैं कि जो चीज कम है वो शायद अच्छी होगी, बेहतर क्वालिटी की होगी।
अच्छा।
दूसरा, जब कोई मौका हाथ से निकलता दिखता है तो हमें लगता है हमारी आजादी छिन रही है। इसे साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस कहते हैं। हम उस खोई हुई आजादी को वापस पाने के लिए उस चीज को और ज्यादा चाहते हैं। वो फोमो जो कहते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो पाने की खुशी से ज्यादा ताकतवर हो सकता है।
सेल्डिनी ने रोमियो और जूलियट इफेक्ट का भी जिक्र किया है कि जब पेरेंट्स रिश्ते पे रोक लगाते हैं तो प्यार और बढ़ जाता है।
हाँ,
क्योंकि वो रिश्ता दुर्लभ हो गया।
हाँ, ये सिद्धांत हमारे व्यवहार पर बहुत गहरा असर डालते हैं।
तो इन छह सिद्धांतों को समझने के बाद इस किताब से जो मुख्य बातें निकलती हैं, जो मेन टेकअवेज हैं, वो क्या है?
मेरे हिसाब से पहला और सबसे अहम है हमारे मानसिक शॉर्टकट की ताकत और उसका खतरा। ये क्लिक वेयर वाली आदतें हमें तेज बनाती हैं, पर हमें वल्नरेबल भी बनाती हैं। दूसरा, हम अक्सर ऑटोमेटिक मोड में चलते हैं। ये जानना जरूरी है कि हम फैसले क्यों ले रहे हैं, अवेयरनेस। और तीसरा, ये सिद्धांत यूनिवर्सल हैं। ये सिर्फ किसी एक कल्चर में नहीं, ये इंसान के स्वभाव का हिस्सा हैं।
इसमें मैं ये जोड़ना चाहूंगी कि नैतिकता का सवाल बहुत जरूरी है। इन सिद्धांतों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, ईमानदारी से, किसी अच्छी बात के लिए, या धोखे से सिर्फ फायदा उठाने के लिए? और सबसे बड़ी बात, जैसा आपने कहा, ज्ञान ही बचाव है।
सही।
इन तकनीकों को समझना ही इनसे बचने का पहला तरीका है। सियाल्डिनी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि सबसे अच्छा बचाव इनसे पूरी तरह बचना नहीं, बल्कि ये पहचानना है कि कब इनका गलत इस्तेमाल हो रहा है।
बिल्कुल, और ये भी याद रखना जरूरी है कि संदर्भ बहुत मायने रखता है। ये सिद्धांत हमेशा एक जैसे काम नहीं करते। कब और कैसे ये ट्रिगर होते हैं, ये जानना हमें इन्हें पहचानने और कंट्रोल करने में मदद करता है।
और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, हमारी रोज की जिंदगी में इनका सीधा असर है। एक ग्राहक के तौर पर सोचे जरा।
हाँ, अगली बार जब कोई सेल्स वाला आपको फ्री सैंपल दे, या पारस्परिकता, या आपकी पसंद की तारीफ करे, पसंद, या कहे ये लिमिटेड एडिशन है, कमी, या ये बेस्ट सेलर है, सामाजिक प्रमाण, तो आप एक पल रुककर सोच सकते हैं, क्या मुझे सच में ये चीज चाहिए, या मैं सिर्फ इन साइकोलॉजिकल दबावों में आ रहा हूँ। ये जागरूकता हमें बेहतर खरीदार बनाती है, घोटालों से बचा सकती है।
हाँ, घोटाले अक्सर कमी और नकली अधिकार का ही डर दिखाते हैं।
बिल्कुल।
और ऑफिस में या बिजनेस में भी इनका नैतिक इस्तेमाल हो सकता है, जैसे मार्केटिंग में असली कस्टमर टेस्टिमोनियल दिखाना, सामाजिक प्रमाण, या फ्री ट्रायल देना,
पारस्परिकता,
मैनेजमेंट में टीम को फैसलों में शामिल करना,
प्रतिबद्धता,
या कॉमन गोल बनाना,
पसंद।
बस जरूरी यह है कि ईमानदारी से हो।
हाँ, पारदर्शिता जरूरी है और निजी जिंदगी में भी काम आते हैं। बच्चों को कोई अच्छी आदत सिखानी हो तो छोटी शुरुआत करें, प्रतिबद्धता।
हाँ।
या वो इमरजेंसी वाली बात।
हाँ, दर्शक प्रभाव से बचने के लिए किसी एक को सीधे निर्देश देना
जी, या अपने लक्ष्य दोस्तों को बताकर खुद पर थोड़ा दबाव बनाना, निरंतरता।
तो कुल मिलाके मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ी सीख ये है कि हम कितना ज्यादा ऑटो पायलट पर चलते हैं, है ना? इन 6 सिद्धांतों को जानना हमें ड्राइविंग सीट पर थोड़ा ज्यादा कंट्रोल देता है, ये समझना कि कब ये हमारे भले के लिए काम करें और कब हमें फंसाने के लिए।
बिल्कुल, ये किताब हमें शक्की या नेगेटिव नहीं बनाती, बल्कि समझदार और जागरूक बनाती है। हमें ये सिखाती है कि ये प्रभाव का मनोविज्ञान कैसे काम करता है, ताकि हम ज्यादा होश में जी सकें। और ये भी समझना जरूरी है कि ये सिद्धांत बने क्यों थे, समाज को जोड़ने, स्थिरता लाने, सुरक्षित रखने के लिए। दिक्कत तब होती है जब कोई इनका गलत फायदा उठाता है।
तो सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ते हैं। अगली बार जब आप किसी चीज के लिए लगभग तुरंत हाँ कहने वाले हों, बस एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये वाकई मेरा सोचा समझा फैसला है या सियाल्डिनी का कोई हथियार अनजाने में मुझ पर काम कर गया है? वो एक पल का ठहराव शायद बहुत कुछ बदल सकता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।